SBS हिंदी।
अगले एक हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया में कई हाई प्रोफाइल डेफेमेशन केसों में सुनवाई होनी है। ग्रीन्स की सेनेटर सैरा हेंसन यंग लिबरल डेमोक्रेट सेनेटर डेविड लियोन हेलम के विरुद्ध कोर्ट में मामले को आगे बढ़ाएंगी। वहीं एक्टर जेफरी रश का द डेली टेलीग्राफ के खिलाफ मामला भी आएगा। लेकिन डेफेमेशन ट्रायल्स में साधारण नागरिक भी आजकल इन्वॉल्व हो जाते हैं। आखिर डेफेमेशन होता क्या है और इस सोशल मीडिया की दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्या ध्यान में रखे जिससे कि वे कानूनी शिकंजे में ना फंसे। साधारणतः डेफेमेशन का अर्थ किसी को डिफेम करने का प्रोसेस या एक्ट होता है। यदि किसी को लगता है कि किसी प्रकाशित सामग्री जिसे एक से अधिक लोगों ने देखा है उससे लोगों की नजर में उसकी रेपुटेशन गिर गई है तो ये डेफेमेशन केस करने का आधार बन सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के लॉ स्कूल के प्रोफेसर डेविड रॉल्फ कहते हैं कि डेफेमेशन साबित करने के लिए कथित डैमेजिंग कमेंट्स को गलत साबित करना जरूरी है।
If you tell the truth about someone, the factual truth about someone, then that's not defamatory because you're only entitled to the reputation that you deserve, not the reputation that you have.
Professor Rolfe ये भी कहते हैं कि defamation के आरोपों से बचने के कुछ दूसरे उपाय भी हैं।
You can also have a complete defense to defamation if you are exercising a right of fair comment, or what's probably better known as honest opinion. So if you express your opinion about a matter of public interest and it's based on true facts, then you're entitled to whatever genuine belief that you have.
Queensland ke poor premier Joe Belki Peterson aur Victoria ke poor premier Jeff केनेथ ने मीडिया संस्थानों को 1980 के दशक और 90 के दशक में डेफेमेशन के मामलों में सफलतापूर्वक सू किया था। अगर हाल ही के समय की बात करें तो लिबरल एमपी सोफी मेराबेला को विक्टोरिया के क्षेत्रीय समाचार पत्र द्वारा डिफेम करने का दोषी पाया गया। लेकिन ये ध्यान रखना खास है कि डेफेमेशन अब केवल सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं है, इसमें अब साधारण नागरिक भी फंसे दिखने लगे हैं। मॉरिस ब्लैकबर्न के एसोसिएट लॉयर पैट्रिक टर्नर इसकी वजह सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को बताते हैं।
There has been a proliferation, I think, of average everyday people who are increasingly looking to defamation law to seek some form of redress where people are making defamatory or untrue statements online.
हालांकि प्रोफेसर रॉल्फ कहते हैं कि ये ट्रेंड अभी बना रहेगा।
The prospects of private individuals being defendants is the sort of the new phenomenon because, of course, particularly social media platforms, which allow us to be publishers to the world at large, have increased the opportunities for people to damage other people's reputations to a much wider audience.
प्रोफेसर रॉल्फ ये भी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कानून डेफेमेशन मामले में प्लेंटिफ की तरफ झुकता हुआ दिखता है, यानी उनकी तरफ जिन्होंने डेफेमेशन की शिकायत दर्ज की हो, ना कि जो शिकायत का बचाव कर रहे हों। वे कहते हैं कि ये अमेरिका के ठीक उलट है, जहां संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट फ्री स्पीच की सुरक्षा करता दिखता है।
Defamation law in Australia and in lots of places around the world derived from English law are more favourable to plaintiffs. And we can contrast this with what's happened in the United States, where because of their First Amendment, defamation law is much more favourable to defendants of free speech and much less protective of reputation.
तो रोजमर्रा की जिंदगी में defamation मामलों से कैसे बचा जाए? मॉरिस ब्लैकबर्न के पैट्रिक टर्नर कहते हैं कि एक साधारण मंत्र याद रखना चाहिए कि ऑनलाइन कुछ भी कहने से पहले दो बार सोच लिया जाए।
I think it's very important in the social media age to be very careful about what you're posting. Think before retweeting an item or sharing it on Facebook. The temptation can often be, I think, to vent on these platforms. So it's important to be wary about what you say, particularly where someone can screenshot what's been said. So simply deleting it after the fact won't necessarily solve the problem.
मेलबर्न स्थित भारतीय ऑस्ट्रेलियाई कम्युनिटी लीडर सोनिका के अनुसार सोशल मीडिया पर लिखने से पहले लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि उसका असर दूसरों पर क्या होगा।
देखिए जो डेफेमेशन का एक हमारी कम्युनिटी में एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी होता है थोड़ी मोड़ी टूटू मैवे भी होती है वो भी फेसबुक पे आ जाती है या ट्विटर पे आ जाती है या दूसरे सोशल मीडिया ग्राउंड्स पे आ जाती है. उससे क्या होता है कि जो दो लोगों के बीच में जो झगड़ा या जो भी बात हुई है उसकी वजह से उसके आसपास जितने भी 10 लोग हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं. तो वो एक राइट सिग्नल नहीं है. अगर जो हम सोशल मीडिया हमारे पास है तो हमें उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए. अगर जो आपको वाकई डैमेज हुआ है किसी की बात से तो उसके लिए हमारे पास लीगल मीडियम्स हैं, आप वहां जा सकते हैं. पहले तो हमें लीगल मीडियम से जाने से पहले बैठ के बात ही कर लेनी चाहिए और उसके बाद नहीं तो हमारे बड़े अच्छे अच्छे लीगल टीम्स होती हैं जो आपके बिहाफ पे आपका केस प्रेजेंट कर सकती हैं और उसको सॉर्ट आउट कर सकती हैं. हाँ, आप सोशल मीडिया पे तब जा सकते हो अगर जो आपको कम्युनिटी कोई मैसेज देना हो, कुछ अलर्ट देना हो जिससे लोगों को बेनिफिट हो, जिससे लोगों का कुछ इस तरह से हो कि वो अपने आप को सेव कर सके. लेकिन अगर जो आप अपने पर्सनल कोई ग्रीवेंसेस हैं वो आप फेसबुक पे ले जाके अगर जो सोचते हैं कि वो वहां रख के वो सॉल्व हो सकते हैं तो वो आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है. मतलब कि स्टार कोई और करता है लेकिन एड आप पे हो सकता है, सारी गलती में भी आपकी ही हो सकती है एट द एंड. तो कुछ भी करने से पहले, मीडिया पे जाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए. और मेरे हिसाब से तो मीडिया इज द लास्ट ऑप्शन. आप या तो बैठ के बात कर लो नहीं तो अपनी लीगल टीम को इन्वॉल्व करो एंड गेट इट सॉर्टेड. क्योंकि मीडिया पे जाने से एक आदमी नहीं, पूरी कम्युनिटी, पूरा कंट्री इन्वॉल्व हो जाता है उसमें. और मुझे तो लगता नहीं कि फिर वो कहां जाता है, कहां जाके खत्म होता है. मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है.
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए.